मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 22 मई 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि पिछले दो दिन आप सबके बड़े खूबसूरत तरीके से बीते होंगे, बहुत ही आनंद में और इत्मीनान से भी। हालांकि कुछ भागों में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन अगर मन में शांति हो तो बाहर की गर्मी का एहसास अपने आप कम हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उतनी शांति तो अब कैसे अंदर पैदा की जाए, इसमें आप सब दक्ष हो ही गए होंगे, क्योंकि लाइफ मैनेजमेंट में हम कुछ इसी तरह की तो बातें करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी अव्यवस्थित उतार चढ़ाव परेशानियों वाली जिंदगी को व्यवस्थित बना सकें, कम उतार चढ़ाव वाला बना सकें और कुल मिलाकर यह कि उसे शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दे सकें। तो मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने जिस विषय का चुनाव किया है, मुझे लगता है कि इस विषय से आप सब भी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। इस बार के शनिवार को जो कपिल शर्मा जी का शो आता है, उसमें मनीषा कोइराला आई थी। आप लोगों ने देखा होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि बड़ा लोकप्रिय शो है और ज्यादातर लोग इसे देखते ही हैं। खैर, मैं मनीषा कोइराला जी का शुरू से प्रशंसक कर रहा हूं, जब से वो फिल्म इंडस्ट्री में आई, और मैंने उनके कई फिल्में भी देखी हैं। और लकली कुछ ऐसा रहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने का मौका भी मिला है, मनीषा कोइराला। इनफैक्ट मैं मनीषा कोइराला की जिंदगी को वाच कर रहा था। मेरे लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यही होती है कि मैं उनके जीवन को देखूं, पढ़ूं, समझने की कोशिश करूं, और फिर अगर अपने लिए कुछ मिल सकता है उसमें से, कोई छोटा मोटा कण जीवन का, तो उसे अपने कहीं बातचीत में, लिखने में शामिल कर सकूं। तो मनीषा कोइराला का जीवन शुरू से मेरे लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। उसके पीछे शायद कारण ये रहा हो, दो तीन कारण, बड़े ऑनेस्टली मैं आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूं। पहला तो ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर परिवार से थी, उनके जो परिवार के चाचा या कोई ऐसे ही हैं जो बड़े क्लोज हैं, वो नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। नो डाउट वो काफी न केवल बहुत अच्छी एक्ट्रेस ही हैं, बल्कि बहुत सुंदर एक्ट्रेस भी हैं। जब फिल्म इंडस्ट्री में आ गई तो उनकी जितनी फिल्में आई वो बहुत सुपरहिट हुई, बड़ी अच्छी फिल्में उन्होंने की, लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि वो फिर शराब के नशे में भी कुछ इस तरह के सुनने में आया कि कुछ ज्यादा ही उनके लिए प्रिय हो गया है। फिर उन्होंने विवाह कर लिया। ठीक है, चलिए विवाह कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन दुखद खबर फिर कुछ समय के बाद ये आई कि उनका जो विवाह है वो तलाक हो गया, मतलब वैवाहिक जीवन भी उनका भंग हो गया। और इसके बाद उन्होंने फिर डिक्लेयर कर दिया शायद कि अब मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। इसी बीच में फिर कुछ ये बातें होने लगी कि शायद वो फिल्म इंडस्ट्री में लौट आए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं लौटी। फिर शायद वो डिप्रेशन की बहुत जबरदस्त शिकार हो गई। इस बीच में फिर उनको कैंसर हो गया, फिर से खबरें उड़ने लगी उनके कैंसर की बीमारी को लेकर के। लेकिन सौभाग्यवश चलिए वो कैंसर से उबरी, और इसके बाद फिर खबरें आई कि अब वो संन्यास का जीवन धारण करने वाली, संन्यासनी का जीवन धारण करने वाली है। अभी मैं दो एक साल पहले या एक साल पहले उज्जैन में जो कुंभ मेला हुआ था, एक साल पहले की बात है, तो उस कुंभ मेले में भी ये सुनने में आया और लोगों ने देखा भी कि वो एक आश्रम में है और वहां संन्यासनी के वेश में वहां बैठी रहती है। तो ये लगा कि शायद अब वो जीवन को छोड़कर के, अब वो मतलब इस गृहस्थ जीवन को छोड़कर के वो संन्यासनी का जीवन धारण करेंगे। इसके बाद फिर से सुनने में आए कि वो फिल्म में सक्रिय हो गई हैं, एक्टिंग में फिर से आ रही हैं, और अब कुछ ही दिनों बाद उनकी एक फिल्म आने वाली भी है और उसके प्रमोशन के संदर्भ में ही वो कपिल शर्मा के शो में आई थी। दोस्तों, ये मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताई, मनीषा कोइराला जी की हिस्ट्री। पता नहीं इस हिस्ट्री को सुनने के बाद आपके मन में किस तरह की धारणा बन रही है। कई तरह की धारणाएं बन सकती हैं और ये धारणाएं अलग अलग और बल्कि एक दूसरे के विरोधी भी हो सकती हैं। आप मनीषा कोइराला को बहुत ही विचलित मन का मान सकते हैं, है ना, कि जिनके अंदर जरा भी स्थिरता नहीं है, राइट? दूसरा आप उनको बहुत ही स्थिर मन का भी मान सकते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी होने के बावजूद वो लड़ी, इतने भटकाव के बावजूद वो अभी भी सक्रिय हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप ये दोनों बिल्कुल कंट्राडिक्शन है। एक तरफ तो भटकाव हम देख रहे हैं ना, कहां प्राइम मिनिस्टर की फैमिली यानी कि वो राजनीति में जा सकती थी बड़े आराम से, और इसके बाद फिर फिल्म, और फिल्म के बाद फिर विवाह, विवाह के बाद फिर विवाह तलाक में बदलना, फिर डिप्रेशन, फिर कैंसर, फिर सब कुछ छोड़ करके संन्यास, और इसके बाद फिर से एक्टिंग में। तो आप अगर रेंज देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ही व्यक्ति में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव, उच्चावच निचावच कैसे हो सकता है, इतने डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस कैसे हो सकती है। देखिए, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो हम सबकी जिंदगियों में होते हैं, लेकिन यहां तो बिल्कुल ही आपको एकदम अप डाउन इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस अप डाउन को आप कमजोर मन की परिणति भी मान सकते हैं कि कमजोर मन के कारण है, या आप एक मजबूत मन का भी प्रमाण मान सकते हैं कि नहीं, देखिए इतने झटके लगने के बावजूद वो कहीं डटी हुई है, पैर उनके उखड़े नहीं है। खैर फ्रेंड्स, वो कपिल शर्मा शो में आई और मुझे जो सबसे ज्यादा जो राहत देने वाली बात लग रही थी, मैं अपने मन की बात बताऊं मित्र, वह थी उनकी हंसी। क्या हंस रही थी, खिलखिला कर हंस रही थी। मतलब जो हंस रही थी वो लग रहा था कि वाकई में वो मन से हंस रही है, अंदर से हंस रही है। कपिल शर्मा केवल एक माध्यम बन रहे हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे शायद जिंदगी में पहली बार वो इतनी गहराइयों से हंस रही हैं। और ये उन्होंने कहा भी कि जिंदगी में पहली बार मैं इतना हंसी हूं, गहराइयों से हंस रही हैं। हंसी आ नहीं रही थी, हंसी फूट रही थी, जिसे देख करके मुझे बहुत ज्यादा संतोष मिल रहा था, बहुत ज्यादा सुख की अनुभूति हो रही थी। मैं तो नहीं हंस पा रहा था लेकिन उनकी जो हंसी थी उसमें मैं अपने सुख को शामिल जरूर कर पा रहा था। तो दोस्तों, इस पृष्ठभूमि में आइए अब हम कुछ बातें करते हैं जिंदगी के बारे में। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि मनीषा कोइराला की यह छोटी सी कहानी, छोटी सी जिंदगी की छोटी सी कहानी अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जीवन में कहीं फुल स्टॉप नहीं है, कहीं फुल स्टॉप नहीं है। जिंदगी कठिन से कठिन परिस्थितियों से क्यों न गुजर रही हो, जिंदगी के सामने इतनी ऊंची चढ़ाइयां आ गई हैं कि हम उसे पार करने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन यह जिंदगी है कि वहां थमती नहीं है, बशर्ते कि आप जिंदगी को थामे रहें। जिंदगी थमती नहीं है, उसमें इतनी ताकत है, इतनी प्रबलता है, इतनी क्षिप्रता है, तेजी है, इतना जबरदस्त प्रवाह है कि थोड़ी देर के लिए तो वो रुकी हुई सी दिख सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इतनी एक्टिवेट रहती है, अंदर ही अंदर वो इतनी क्रियाशील रहती है ज्वालामुखी की तरह कि समय मिलते ही फूट पड़ने से उसे कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, मुझे लगता है कि जिंदगी के प्रति ये आस्था, यह गहरा विश्वास हम सबके अंदर होना चाहिए, होना ही चाहिए। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि जब हम इस आस्था और विश्वास की बात करते हैं तो यह सिर्फ टिके रहने की बात नहीं है, चुपचाप बैठे रहने की बात नहीं है। आस्था या विश्वास या ये दोनों, ये एक्शन के साथ होने चाहिए, इनमें एक्शन होना चाहिए, इनमें गतिशीलता होनी चाहिए, इनमें तीव्रता और क्षिप्रता होनी चाहिए। यानी कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम करेंगे, हम किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। ईश्वर पर विश्वास करना तो ठीक है, लेकिन ईश्वर के भरोसे बैठ जाना ठीक नहीं है। ये मुझे अभी एक संदेश किसी का मिला था, मेरे स्टूडेंट का ही संदेश था जो मुझे मिला था, बहुत खूबसूरत बात थी। ईश्वर पर विश्वास तो कीजिए लेकिन ईश्वर के भरोसे मत बैठे रहिए। आस्था बहुत बड़ी ताकत होती है, वो हमारे पैरों के नीचे की जमीन होती है, लेकिन वो जमीन मूव नहीं करती। हालांकि पृथ्वी ठीक है 1.5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही होगी, लेकिन हम तो जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे अगर हमने अपना पैर नहीं उठाया तो। घूमती होगी पृथ्वी, घूमती ही है, लेकिन हम भी अगर उसके साथ घूम रहे हैं तो हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। कहीं पहुंचने के लिए तो हमें अपने पैर उठाने पड़ेंगे। यानी कि आस्था के साथ साथ एक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि आप अपने खुद को, अपने आप को ठेलते रहिए, धक्का मारते रहिए। धक्का मारेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे, और जो पहुंचना होगा, भले हो सकता है कि अभी से वो बदतर हो, अभी जहां हम हैं उससे थोड़ा सा बदतर हो, लेकिन आप बदतर पर जाकर रुकेंगे तो नहीं, क्योंकि आप तो लगातार अपने आप को ठेल रहे हैं, लगातार आप एक्शन में हैं, तो उस बदतर को भी आप पार करेंगे और फिर कितने बदतर में पहुंचेंगे। फिर कभी न कभी ऐसा आएगा जबकि आप बेहतर स्थिति में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, क्योंकि जो कर्म है, आस्था और कर्म का अगर मेल है तो मानकर चलिए दोस्तों कि उससे जो फल निकलेगा, उससे जो फ्रूट्स उसमें जो लगेंगे ऐसे पेड़ में, वो मीठे होंगे, बहुत मीठे होंगे, अजर अमर जैसे होंगे। और ऐसे ही लोग सच पूछिए तो अपने अपने क्षेत्रों के इतिहास में एक अध्याय लिख जाते हैं। दोस्तों मनीषा कोइराला तो एक लड़की है, लड़की मैं इसलिए कह रहा हूं हालांकि अब वो ऐसा समय नहीं रह गया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उनके साथ बहुत सी सीमाएं होती हैं। उन्होंने खुद कहा कि मुझे नहीं मालूम था एक्टिंग के बारे में, कुछ नहीं मालूम था, बस मेरी इच्छा हुई कि मुझे एक्टिंग करना है, मैंने अपनी मम्मी से कहा और मेरी मम्मी मुझे लेकर के यहां दिल्ली बॉम्बे जो भी था वो आ गई, वो भी प्रोग्राम में आई हुई थी, आपने देखा होगा। और फिर आप देखिए कि मनीषा कोइराला ने शुरुआत किन फिल्मों से की, किन बड़े बड़े एक्टर्स के साथ की, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ जो आज के बड़े हैं और पुराने दौर के बड़े थे, दिलीप साहब, राजकुमार, इन सब के साथ उन्होंने एक्टिंग की। और फिर जब इधर आ गए तो शाहरुख खान और सलमान खान और आमिर खान और नाना पाटेकर जैसे जो बड़े वर्सटाइल एक्टर हैं उनके साथ बिल्कुल न्यू कमर काम कर रही है, तो वहां कितनी बड़ी आत्मविश्वास की जरूरत पड़ी होगी इन एक्टर्स के साथ काम करने में। और इतनी सफलता के बाद फिर से वो जीवन के नए दौर में एंटर कर जाती है, और याद रखिए कि एक को छोड़कर के दूसरे बिल्कुल नए क्षेत्र में जाना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत ही ज्यादा हिम्मत चाहिए। लेकिन मित्रों जिंदगी में दुनिया में पाया ही उन लोगों ने है जिन्होंने हिम्मत दिखाई है, जो लगातार पहुंचे वही लोग हैं जो लगातार मूव करते रहे हैं। और मुझे मनीषा कोइराला का जो जीवन है वो इसी तरीके से लगातार मूव करते रहने वाले लोगों में लगता है। सच पूछे मित्रों तो जब भी मैं मनीषा जी के बारे में कुछ पढ़ता था कि वो डिप्रेशन में हैं, इस तरह की परेशानियों में हैं, तो पता नहीं क्यों बड़ा खराब सा लगता था कि नहीं, उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो तो बहुत ही वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं और उनको वो अगर ऐसा हो सकती हैं तो बाकी लोगों का क्या होगा, बाकी लोग क्या मैसेज इससे लेंगे। लेकिन सैटरडे को मुझे बेहद खुशी हुई कि नहीं, ऐसे लोग बीच में भले ही थोड़े समय के लिए परिदृश्य से गायब हो जाते हैं, थोड़ा सा निगेटिव मैसेज देने लगते हैं, लेकिन अंततः झंडा तो उन्हीं के हाथ में होता है, विजय का जो झंडा होता है, विजयी झंडा उन्हीं लोगों के हाथ में होता है। तो मित्रों मुझे लगता है कि मनीषा कोइराला के जीवन से हम यह सब अपने लिए एक रस, मधुरस, निष्कर्ष फल निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।